समझ नहीं पा रहा है। तो अब श्रीवास ठाकुर आए कहां पर, सबसे पहली बार है कि किसी व्यक्ति ने सही रोग की जांच की। अब वो कौन है, श्रीवास ठाकुर है ना, सही जांच किया रोग का, तो वो जो है श्रीवास ठाकुर थे। तो सची माता परम उदार हैं, जिसके मुख से जो सुनती हैं वही कहने लगती हैं कि हाँ मेरे पुत्र को यही रोग हो गया, वही रोग हो गया। कोई कहता है ये रोग हो गया, तो सची माता कहती हैं हाँ यही हो गया, यही हो गया है ना। चिंता से व्याकुल होकर कुछ सोचता नहीं है और मन कर्म वचन से गोविंद की शरण में गई कि मेरे पुत्र की रक्षा करो, हे गोविंद मेरे पुत्र की रक्षा करो। वो नहीं जानते उनका पुत्र ही गोविंद है। तो वैष्णवों के श्रीवास आदि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज भेज कर सब वृत्तांत उन्होंने सूचित किया कि निमाई को जो है पता नहीं क्या हो गया है। तो श्रीवास ठाकुर के पास भी आदमी भेजा सूचना देने के लिए। एक दिन श्रीवास पंडित सची के घर आए तो प्रभु ने उठकर सावधानी से उन्हें नमस्कार किया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीवास पंडित आए यही देखने के लिए क्या हो गया। श्रीवास पंडित भी नहीं जानते क्या हो गया, सची माता ने सूचना दी है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो श्रीवास पंडित आए तो श्री चैतन्य ने उनको सावधानी से नमस्कार किया और भक्त के दर्शन से भक्ति भाव उमड़ पड़ा। श्रीवास ठाकुर कैसे भक्त हैं है ना, सब लोग जानते हैं कैसे भक्त हैं। तो भक्ति के दर्शन से भक्ति भाव उमड़ पड़ा और प्रेम के कारण शरीर में रोमांच अश्रु और कंपन प्रकट हुए। तुलसी की परिक्रमा दे रहे थे परंतु भक्त को देखकर तत्काल ही मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में सचेत होने पर प्रभु रोने लगे और शरीर में बहुत ही कंपन होने लगा। अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे कि तो महान भक्त योग है, कौन इसे वायु का प्रकोप बताता है। ये पहली बार किसी व्यक्ति ने सही जांच की है कि कौन वायु का प्रकोप बताता है, ये तो महाभक्ति योग है। भक्त देखी प्रभुर बाढ़ी ले भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपात्र कंप अनुरांग, तुलसी रे आछीला करी ते प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाई लता खने। प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा। अब जब भगवान होश में आए तो श्रीवास पंडित से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हे पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो। सब लोग ऐसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांधने के लिए कहते हैं, पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या जंचता है। किसने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसने कहा कि आप अपना निष्कर्ष बताइए। सब लोग तो यही कहते हैं क्या है, मुझे वायु रोग है और क्या करना है मेरे साथ, मुझे बांध के रखना है। आप बताइए कि आपको मेरे बारे में क्या जंचता है। बाह पाए प्रभु बोले पंडित रस्थाने, की बूझे पंडित तुम्हें मोहर वेधाने। श्रीवास पंडित हंसकर बोले बड़ी अच्छी वायु है। पहली बार कोई व्यक्ति हंसा, सब तो चिंतित हो रहे हैं भाई ये हो गया वो हो गया, ये करो वो करो, सची माता को और चिंतित कर रहे हैं। पहली बार कोई व्यक्ति हंसा और क्या कहा, बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूं। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, अतः तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रसन्नता प्रकट की चैतन्य के इस भाव को, जो दशा है उसका सही सही जांच किया ना। और बोले सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की, अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूं। पहली बार श्री चैतन्य को बड़ी सांत्वना मिली कि कोई व्यक्ति सही जो है सहानुभूति, अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूं, यदि तुम भी इसे वायु बताते तो अवश्य ही गंगा में प्रवेश कर जाता। अगर तुमने भी बताया होता तो मैं क्या करता, गंगा जी में प्रवेश कर जाता। सबे बोले वायु सबे आसंसीले तुम्हें, आज ही बड़े कृत्य कृत्य हई लांग आमी, यदि तुम्हें वायु हेन बलिता आमारे, प्रवेश तुम आज आमे गंगा रे भीतरे। श्रीवास बोले तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शिव सुखदेव भी आस्वादन करना चाहते हैं, ये तो इतना दुर्लभ है, ऐसा भक्ति योग है। पाखंडी पापी लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, हम सब मिलकर अब एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे। श्रीवास बोले, है ना, सभे मिली ऐठाई करीब कीर्तन, ये के निन्ना बोले पाखंडी पापी जन। श्रीवास सची माता से बोले, अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। कौन बोले, कौन बोले, श्रीवास किससे बोले, सची माता, अब आप बिल्कुल अपने चित्त के दुखों को दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहती हैं तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहें। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए और सची माता के हृदय से भी वायु रोग का भ्रम दूर हो गया। तथापि सची माता अंदर अंदर चिंतित थी कि कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी रक्षा हो गई, है ना। तो इसी घटना से फिर क्या हुआ, श्रीवास का सौभाग्य खुला और उनके ही घर में फिर क्या होने लगा, कीर्तन। तो श्रीवास के घर में ही भगवान कीर्तन करने लगे, क्योंकि उन्होंने ही इस रोग की प्रशंसा की थी, है ना। तो सौभाग्य श्रीवास को मिला, है ना। अब जब कीर्तन हो रहा है, श्रीवास के घर में रोज कीर्तन हो रहा है, तो पाखंडियों को जो है अब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत जलन हो रही है, है ना। तो जब जलन होती है तो वे लोग जो है तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रहे हैं, है ना। और ये भी अफवाहें फैला दी कि ये शिकायत जो है तुम्हारे कीर्तन की शिकायत राजा के पास चली गई, और राजा मुसलमान है, तो मुसलमान राजा जो है अपने सिपाहियों की सेना जो है यहां भेजेगा और श्रीवास को पकड़वाएगा और कई लोगों को पकड़वाएगा, जेल में बंद कराएगा। तो श्रीवास बड़े चिंतित हैं। तो भगवान अब सोचते हैं कि अब तो मुझे अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा, नहीं तो भगवान अभी भक्त के रूप में केवल कीर्तन कर रहे हैं और भक्त लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब भगवान को आवश्यकता हुई कि अब मुझे भगवान के रूप में अपने को प्रकट करना होगा, नहीं तो डरते रहेंगे, फिर कीर्तन कैसे होगा, इनके अंदर डर पैदा हो गया है। तो अब भगवान जो है दौड़कर श्रीवास के घर पहुंचे और बड़े गर्व के साथ बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। तो वैसे पिता के समान है श्रीवास, तो पंडित बोलते थे हमेशा, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अरे श्रीवासिया, क्यों बोल रहे हैं, भगवान, भगवान कैसे बोलेंगे, ऐसे तो बोले, क्या बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। और श्रीवास नरसिंह की पूजा कर रहे थे, कई कोई संकट आए तो नरसिंह की पूजा विशेष करते हैं, तो श्रीवास नरसिंह की पूजा कर रहे थे और द्वार पर प्रभु बारंबार लात मारने लगे और कहने लगे, अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। भगवान क्या कहते हैं, पहली बार श्रीवास को कहते हैं कि तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। और ज्वलंत अग्नि के समान श्रीवास की समाधि भंग हो गई, चारों ओर देखने लगे, उन्होंने देखा कि विश्वंभर चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, चार भुजाएं, हरि बोल, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास का शरीर कांप उठा, कैसे, हर्ष में कांप उठा, श्रीवास का शरीर कांप उठा और मुख से कुछ ना बोल सके। प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना है, तेरे उच्च संकीर्तन और नाड़ा के हुंकार से मैं वैकुंठ को छोड़कर सब परिवार सहित यहां आया हूं, और तुझको पता नहीं, तेरे संकीर्तन से और नाड़ा के हुंकार, नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य, तेरे संकीर्तन उच्च संकीर्तन और नाड़ा के हुंकार से मैं वैकुंठ छोड़कर पूरे परिवार के सहित आया हूं, तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है, तू मुझे पहचान नहीं रहा तो तू मुझे लाकर के निश्चिंत हो गया है और नाला मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है, कैसा न्याय करते तुम दोनों। भगवान कह रहे हैं मुझको बुलाया, अब तुम भी जो निश्चिंत हो और नाला जो है शांतिपुर चला गया है, मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति कर। भगवान कह रहे हैं मेरी स्तुति कर। तोरे उच्च संकीर्तने नाला रे हुंकारे छाड़िया वैकुंठ आईलो सर्व परिवारे निश्चिंत अच्छा तुम्हें आमारे आनिया शांति पूरे गेले नाला आमारे एड़िया साधु उद्धारी मो दुष्ट विनाशी मो सब तोरे के छु चिंता नाई पाड़े मो रस्तव। अब जब भगवान कहते मेरी स्तुति करो तो श्रीवास के तो मन की हो गई, उनका तो दिन रात क्या करते हैं स्तुति ही करते हैं। श्रीवास का भय दूर होगा हो गया, प्रेम में रोने लगे श्रीवास पंडित। एक तो वैसे ही महाभागवत, फिर प्रभु की आज्ञा हुई तो उनकी मन चाही हो गई, स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है उसी की श्लोक पढ़ करके वो जो है उसमें कुछ और बातें जोड़ते जा रहे हैं। तो क्या बोले ब्रह्मा जी ने स्तुति की है कि आपका नव जलधर के समान शरीर है, तो उसी के ही जो है संबंध में वो पढ़ रहे हैं, मैं श्री विश्वंभर के चरणों में नमस्कार है जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला है, जो पीतांबर पहने हैं सचिन नंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण है, गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है जो मनमाला पहने हुए हैं। तो आधि प्यार चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, आधि प्यार कृष्ण के संबंध में, तो इस तरह से मिक्स करके वो बोल रहे हैं कि वही चैतन्य जो है वही कृष्ण है। तो अब मैं जो है बंगाली पढ़ूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार, नव घन जिमे वर्ण पीत वास जार, सचिर नंदन पाए मोरे नमस्कार, नव गुंज सिखी पुछे भूषण जहार, गंगादास शिष्य पाए मोरे नमस्कार, वन माल करे दधि ओदन जहार, जगन्नाथ पुत्र पदे मोरे नमस्कार, कोड़ी चंद्र जिन्ह रूप वदन जहार, सिंगवित्र वेणु चिन्ह भूषण आहार, से ही तुम्हें नव द्वीप काली आए कैले अवतार, चारी वेदे चारे घोषे नंदेरे कुमार, से ही तुम्हें तुम्हारे चरणे नमस्कार। फिर अब और स्तुति कर रहे हैं श्रीवास जो है रुकते नहीं है। तुम्हें विष्णु तुम्हें कृष्ण तुम्हें यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरणों दक गंगा तीर्थ वर, जानकी वल्लभ है तुम्हें नर सिंह, अज भाव आदि तोर चरण रे भिंग, तुम्हें से वेदांत वेद तुम्हें नारायण, तुम्हें से छलीला बलि हैया वामन, तुम्हें है ग्रीव तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीला चले चंद्र सा भरे तारण, तुम्हारे माया कार नाही है भंग, कमल न जाने जार जाने से एक संग, संगी सका भाई सर्व माते से वेजे, हे ने प्रभु मोह माने अन्य जन के। तो लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती हैं, जो साथी हैं सखा हैं भाई हैं सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, वे बलराम जी भी तुम्हारी माया से मोह में पड़ जाते हैं, फिर औरों की तो बात क्या। प्रभु तुमने मुझे इस मिथ्या गृहस्थ में भुला रखा है, तुम्हें ना जानकर मेरा जन्म ऐसा ही व्यर्थ चला जा रहा है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, श्रीवास कह रहे हैं, हे नाथ तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, तुम मेरी पूजा की डाली और धोती उठा करके चलते रहे। भक्त की सेवा भगवान जो है ये सिखाने के लिए कि हमें भक्ति की ऐसी सेवा करना है। तो श्रीवास की जो है धोती उठा के चलते थे, डाली उठा के चलते थे। हे प्राणनाथ मुझे भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए, आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ, आज मेरा जन्म मेरे कर्म सब सफल हो गए, आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हो गए, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया, आज मेरा घर धन्य हो गया, आज मेरे नेत्र के नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है कि आज मैं इन नेत्रों से उनको देख रहा हूँ जिनके श्री चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तन मन में ऐसा अद्भुत सुख हुआ कि आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर दयापूर्वक श्रीवास से बोले, कौन बोले जोर से बोलो ना, चैतन्य महाप्रभु, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सबको बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ, क्योंकि अंदर है ना भगवान, तो वो कमरा जो है इतना बड़ा नहीं कि सब लोग आ जाएं, तो भगवान के लिए बाहर से सब लोग मेरे दर्शन करेंगे, तो सबको बाहर बुलाओ, जैसे कि मंदिर का कक्ष है तो भगवान है और सब बाहर से दर्शन करते ना, तो भगवान जो है पूजा के घर में आ गए हैं और उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, पता नहीं 500 लोग होंगे, उनके दास दासियां, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा परिवार, तो कहा सबको बुलाओ बाहर, है ना, सबको बाहर बुलाओ, क्यों बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखे हैं, तो मिस्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीनिवास पंडित अपने परिवार सहित शीघ्र आ गए। उन्होंने विष्णु पूजन के लिए जितने फूल थे वे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए। सुगंधी माला धूप दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की। स्त्री सहित श्रीनिवास रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्यों रो रहे? प्रेम के कारण। फिर भाई पत्नी दास दासी सबको लेकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीनिवास के प्रिय विश्वंभर प्रभु ने सबके सिर पर अपने चरण रखे और सबके सिर पर चरण स्पर्श करते हुए भ्रमण करने लगे और हंसकर बोले, मुझ में सबका चित्त लगे। फिर हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीनिवास से बोले, अब भगवान क्या बोले, क्योंकि जो बोलना था उनको अब वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका डर है, श्रीनिवास का डर है। तो भगवान बोले, हे श्रीनिवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक राजा की नौका आ रही है, तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं उन सब का मैं स्वेच्छानुसार प्रेरक हूं। जब तक मैं उस राजा के शरीर के भीतर से ना बुलवाऊंगा तब तक वो पकड़ने के लिए कैसे बोलेगा? मैं राजा के मुंह से जब तक ना बुलवाऊं तब तक वो कैसे आज्ञा दे सकता है पकड़ने की? यदि ऐसी बात नहीं हुई, स्वतंत्र रूप से अगर आज्ञा करे, तो अभी मैं यह करना चाहता हूं कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूंगा और राजा के सामने पहुंचूंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने आसन पर बैठा रहेगा? क्या मैं उसे बेहवल बनाकर वहां गिरा नहीं सकूंगा कि वह सिंहासन से मैं बैठा रहेगा अगर मैं जाऊंगा? यदि ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो वो मैं चाहता ही हूं, मैं उससे जो कहूंगा, मैं तुझसे कहता हूं सुन, मैं कहूंगा, अरे राजा सुन सुन, तू सत्य मिथ्या को पहचान, तेरे जितने काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला ले। क्या? तेरे जितने काजी मुल्ला हैं सबको बुला ले और तेरे जितने हाथी घोड़ा और पशु पक्षी हैं उन सबको भी यहां मंगवा ले। फिर अपने सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर कि अपना शास्त्र पढ़कर इन सब पशु पक्षियों को रुलाएं, प्रेम में रुलाओ। यदि वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं राजा के आगे अपने को प्रकट करूंगा। मैं कहूंगा, अरे राजा, तू इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है, इनकी जितनी शक्ति है ये तो तूने सब देख ली, अब तू आंख खोल करके मेरी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा और वहीं पर सबको कृष्ण कृष्ण कहकर के रुलाऊंगा। हरि बोल। राजा के साथ राजा के जितने लोग हैं उन सबको कृष्ण कृष्ण कहलवाकर खूब रुलाऊंगा मैं। तो प्रेम अवतार है, प्रेम पुरुषोत्तम है। कुछ भी अगर करते हैं तो यही करते हैं कि प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और कितने नीच कितने पतित हैं उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं ना। हे श्रीनिवास, यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं होता तो विश्वास कैसे होगा? अभी तक कुछ करके तो दिखाया नहीं है? तो भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूं। अब हाथी घोड़ा पशु पक्षी यहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो राजा के घर में तो होते हैं हाथी घोड़ा पशु पक्षी, यहां तो कोई नहीं है। और यहां भक्त लोग हैं तो वो तो अगर प्रेम से रुलाएं तो पहले से ही प्रेमी है, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, श्रीनिवास की भतीजी नारायणी एक बालिका थी तो वो जो है वहां खेल रही थी, तो भगवान ने आज्ञा की, नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो। तो 4 वर्ष की बालिका को कहां ज्ञान, उसको अगर रुला दिया कृष्ण प्रेम में तो इसका मतलब हाथी घोड़े को भी रुला सकते हैं। 4 साल का बच्चा क्या है ना। 4 वर्ष की बालिका प्रेमोन्मत्त हो गई, केवल भगवान ने आज्ञा की कि तू रो। कोई 4 साल का बच्चा रोएगा जब तक कि उसे कोई कष्ट ना हो? कोई नहीं रोएगा। लेकिन कृष्ण प्रेम में भगवान ने कहा तुम रो, तो प्रेम उन्मत्त हो गई और हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी और कुछ ज्ञान उसे ना रहा, आंसुओं की धारा पृथ्वी पर बहने लगी और वो स्थान पूरा जल से भर गया। इतने आंसू, 4 साल की बच्ची में इतने आंसू कि पूरा स्थान जल से भर गया। तब प्रभु विश्वंभर हंस हंस कर कहने लगे, अरे श्रीवास अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया है ना। श्रीवास बड़े भारी वक्ता हैं, दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले, मैं आपकी काल रूपी भगवान मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है तब भी आपकी कृपा बल से मैं भयभीत नहीं होता हूं, फिर इस समय जबकि आप मेरे घर में हैं मुझे किसका भय है। श्रीवास का भय दूर हो गया। ये कहते कहते श्रीवास को आवेश हुआ, आनंद पूर्वक परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दासी दास देख रहे हैं, केवल भक्ति की सेवा से। जो दास दासी हैं वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, सब अशिक्षित हैं, कुछ भी नहीं, मूर्ख हैं। श्रीवास के घर में रहते हैं, उनका दिया खाते हैं और काम करते हैं, सेवा करते हैं, इतने से उनको भी दर्शन हो रहे हैं, है ना। श्रीवास के चरित्र को मैं क्या कहूं, जिनकी चरण रस से संसार पवित्र होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव जी के घर में हुआ, लीलाएं नंद बाबा के घर में हुई, उसी प्रकार ये गौर अवतार भी हुआ जगन्नाथ जी के घर में, और सारी लीलाएं कहां हुई, श्रीवास पंडित के घर में हुई। श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं, उनके घर जाने में सबको बड़ा आनंद होता है। सर्व वैष्णवे रे प्रिय पंडित श्रीवास, तारे बाड़ी गेले मात्र साभारे उल्लास। वेद अपने ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दासी उन्हीं को सुख पूर्वक अपने आंखों से देख रहे हैं। वेद भी नहीं देख पाते भगवान को, है ना। इसलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। सबसे बड़ा उपाय क्या है, वैष्णव सेवा। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वंभर ने श्रीवास को आज्ञा की कि तुम ये सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं, और बाहरी दशा में आने पर मन में बड़े लज्जित हुए और अपने घर चले गए। ये कहा कि किसी को ये चरित्र नहीं सुना। श्रीवास के घर की जो चार दीवारी है उसके अंदर अपना सब कुछ रहस्य बता दिया, तत्व बता दिया, दर्शन दे दिया, और घर के बाहर किसी को कुछ पता नहीं, सब जो है क्या है, जीरो, बाकी सब लोग जीरो हैं। और जब बाहरी दशा में आए तो लज्जित हो गए कि मैंने कोई चंचलता तो नहीं की। भगवान जो है बाहरी आवेश में आए तो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने से कोई चंचलता तो नहीं हो गई आपकी। भगवान जो है जब ईश्वर आवेश में आते हैं तो अपना तत्व बताते हैं, और जब बाहरी आवेश में आते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे द्वारा कोई चंचलता तो नहीं हो गई, लज्जित हो गए भगवान और चले आए। अब ये घटना है उस समय की जब भगवान अपना ईश्वर भाव प्रकट करते हैं, है ना। कहां पर है, श्रीवास के घर में है, और सब भक्तों को एक एक करके बुलाते हैं और उनको अपनी कृपा की याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कब कृपा की थी और कैसी कृपा की थी, तुम याद करो। तो भगवान ने श्रीवास को भी बुलाया, तो केवल उतने मैं पढ़ रहा हूं जो श्रीवास से संबंधित है। श्रीवास को बुलाया और क्या कहते हैं, अरे याद तुझे है, तुझे याद, तूने देवानंद पंडित के स्थान पर भागवत सुनी थी, भागवत तो प्रेम रसमयी है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय द्रवित हुआ और तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे, बेहवा लोग भूमि पर गिर पड़े। लेकिन विद्यार्थी कैसे थे, अज्ञानी, सब विद्यार्थी अज्ञानी थे, भक्ति भाव को क्या समझे, वे कहने लगे ये क्यों इतना रोता है, कुछ समझ में नहीं आता, और तुम तो प्रेम की तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध थे, विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। कितना अपमान, वो विद्यार्थी इतने मूर्ख। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया, जैसे गुरु अज्ञानी वैसे शिष्य भी अज्ञानी थे। गुरु देख रहा है और वो मना नहीं कर रहा है, तो उसकी मौन, उसका मौन रहना ही स्वीकृति का लक्षण है। गुरु के सामने शिष्य लोग जो कुछ काम कर रहे हैं और गुरु मौन है तो इसका मतलब क्या है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, है ना। तो देवानंद पंत का ज्यादा अपराध हो गया, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं, वो चुप रहा। उसके देखते देखते शिष्य लोग जो है श्रीवास पंडित को उठा करके बाहर डाला है, ना। उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहां से खड़े दुखित होकर घर लौट आए, मन में दुख पाकर तुम एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत उठाकर देखने लगे। अपने घर में आकर के तुमने श्रीमद् भागवत की पुस्तक खोली और मन में बड़े दुखी थे, तब मैं तुम्हारा दुख देकर बैकुंठ से आया। क्या समझे, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रीवास के दुख को और कौन जान सकता है, वे सब मूर्ख थे गुरु शिष्य, और श्रीवास ने अपना दुख और किसी को बताया नहीं, हा? तो और कौन जानता है भगवान के सिवा। तो भगवान वैकुंठ से आए, हा? और वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया, तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर अपना प्रेम योग दिया, तुम्हें रुलाया, तब तुमको भागवत सुनकर बड़ा आनंद हुआ, तुम्हारे नेत्रों के जल से सारा स्थान भीग गया। यह अनुभव को पाकर श्रीवास आनंद में बेहाल होकर भूमि पर लोटपोट हो गए और लंबी सांस लेकर रोने लगे। अब यह घटना किसी को पता नहीं, श्रीवास के साथ जो घटना हुई किसी को पता नहीं, देवानंद ना कोई किसी को बताया गया, ना वो विद्यार्थी लोग किसी को बताएंगे, है ना। भगवान ने जो है इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की थी। धोखे पावे माने तो मैं बेरा लेवा सीला, आरे वारे भागवत चाहे तेला गीला, देखिया तो मारे दुखे श्री वैकुंठ है ते, आविर्भाव हई लांग तो मारा देहते। अब एक घटना है कि भगवान श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे हैं और सब भक्तजन सुखपूर्वक संकीर्तन कर रहे हैं, और श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण परलोकवास हो गया। इसी बात में इसी समय जो है श्रीवास के पुत्र का परलोकवास हो गया और घर की स्त्रियों ने देखा रोने लगी, और श्री चैतन्य आनंद में नृत्य कर रहे हैं, श्रीवास के घर में महा क्रंदन ध्वनि होने लगी। तो यहां नृत्य हो रहा है भगवान चैतन्य का और श्रीवास के घर में अब क्रंदन ध्वनि होने लगी। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए तो देखा पुत्र की मृत्यु हो गई, बड़े गंभीर बड़े तत्वज्ञानी स्त्रियों को प्रबोध देने लगे, तुम लोग तो सब श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। श्रीवास बोले, क्या बोले, रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो, देखो अंत समय पर एक बार भी जिसके नाम को सुनकर बड़ा पापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहां नृत्य कर रहे हैं और ब्रह्मा शिव आदि दास उनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है। श्रीवास क्या कह रहे हैं, ऐसे समय में जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है, यदि किसी समय इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को कृतार्थ मानूं। ऐसे समय में जिसकी मृत्यु हो उसका क्या है, सौभाग्य है। यदि तुम इस संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकते हो फिर भी वही कहेंगे शिष्टाचार तो है कि शोक करना चाहिए, संसार का धर्म है, अगर नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो और तुम्हारे रोने को कोई ना सुन पाए और प्रभु के नित्य सुख में बाधा ना हो। इतने धीरे धीरे रो कि भगवान के सुख में बाधा ना हो, तुम्हारे क्रंदन के कोलाहल को सुनकर यदि प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआ तो मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या करूंगा मैं, गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। हे न प्रभु आपने साक्षात कहते नित्य गुण गाय जत तार ब्रह्म आदि भृत्य, ये समय जहां रहाई ले पार लोक ये की जोया करी ते आर छोक। श्रीवास के वचनों से सब स्त्रियां स्थिर हो गईं, अब और डर लग गया। श्रीवास ने अपनी भी बात बता दी कि मैं भी गंगा में प्रवेश कर जाऊं, तो अब वो डर के मारे चुप हो गई और श्रीवास प्रभु के संकीर्तन में चले गए और आनंद पूर्वक संकीर्तन करने लगे। श्रीवास पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास अधिक अधिक बढ़ता जा रहा है। किसका, श्रीवास का उल्लास बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, उनकी हालत ये हो रही है ऐसी, श्रीवास का उल्लास बढ़ता जा रहा है, अब मैं पूछता हूं तो ऐसे करो, क्या हाल है? मैं देख रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, नहीं तो मैं क्यों सुना रहा हूं? आप लोगों को उत्साह देख करके मैं सुना रहा हूं या फिर मैं भी ऐसे करूंगा? सब लोग ऐसे करो, मैं भी ऐसे करूंगा। क्या सुना? हाँ जी आप बताइए, क्या सुना आप बताइए? श्रीवास का उल्लास बढ़ता जा रहा है। हाँ, श्रीवास पंडित की ऐसी महिमा है, चैतन्य देव के पार्षद के गुणों की यही सीमा है। श्री चैतन्य आनंद में नृत्य कर रहे हैं भक्तों के साथ। कुछ समय इस प्रकार बीत गया और धीरे धीरे एक दूसरे से खबर होते होते सब भक्तों ने सुन लिया श्रीवास पंडित के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। सबके हृदय बड़ा दुख हुआ, किसी ने बाहर प्रकट नहीं किया। अब कीर्तन में क्या हो गया? उल्लास घटने लगा, और लेकिन बाहर से कोई नहीं बोला, कानों कानों पता चला। श्री चैतन्य सर्वज्ञों के शिरोमणि है, भगवान तो सर्वज्ञों के शिरोमणि है। स्वयं ही सबसे पूछने लगे, आज मेरा चित्त ना जाने कैसा हो रहा है, क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आया है? भगवान सब जानते हैं, पूछ रहे हैं क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आया है। श्रीवास बोले, मेरा कौन सा दुख हे प्रभु, जिसके घर में आपका प्रसन्न मुख है, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे घर में क्या दुख हो सकता है। परंतु जो दूसरे भक्त थे उन्होंने कहा कि श्रीवास के पुत्र का स्वर्गवास हो गया है। प्रभु ने पूछा कितनी देर हुई, तो उन्होंने बताया कि 4 पल रात्रि की बात है, परंतु आपके आनंद के भंग हो जाने के भय से श्रीवास ने इस बात को बताया नहीं है। परलोकवास हुए अभी 2.5 प्रहर हो चुके हैं। 2.5 प्रहर, अगर 1 प्रहर 3 घंटे का माने तो 2.5 प्रहर कितना हुआ? 7.5 घंटा, 7.5 घंटा हो गया। अब आप आज्ञा दें तो उसका अंतिम कार्य किया जाए। श्रीवास की अद्भुत अवस्था देखकर प्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। फिर प्रभु बोले, ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा? ऐसा कि महाप्रभु रोने लगे, जिन्होंने मेरे प्रेम बस पुत्र शोक को ना जाना, ऐसों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा? ऐसा कि महाप्रभु रोने लगे। उनके श्रीमुख से छोड़ने की बात सुनकर सब भक्त मन में सोचने लगे कि क्या विपत्ति आने वाली, भगवान क्यों बोलने की क्यों कैसे छोड़ूंगा। सब भक्त चिंता करने लगे, उन्हें लगा कि प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे। इसलिए भक्त लोग उच्च स्वर से रोने लगे, और जब उन्होंने देखा कि प्रभु स्थिर हो गए हैं, अंतिम संस्कार के लिए बालक को ले जाने लगे। गारस्ते छाड़ी या प्रभु करी बे संन्यास, तारे ध्वनि करी कांधे छाड़ी दीर्घ श्वास। उस समय प्रभु ने मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? देखो 7.5 घंटा हो चुका है और भगवान उसे पूछ रहे हैं कि तुम श्रीवास का घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। मृत बालक चेतन होकर बोल उठा, प्रभु आपके विधि विधान से भला उसे उलटने की शक्ति किसमें है। मृत पुत्र प्रभु को उत्तर देने लगा, परम अद्भुत वार्ता सब भक्त लोग सुनने लगे। क्या समझे? कौन रो रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ, मरा हुआ बालक रो रहा है। बालक फिर कहने लगा, जिस देह से जितने दिन का संयोग था उसका सुख भोग लिया, ये संयोग पूरा हो गया तो अब टिक नहीं सकता हूं। अब मैं कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक के लिए जा रहा हूं, जहां कर्म बंधन शून्य है। वो कौन सा लोक है? वैकुंठ लोक है। कर्म बंधन से शून्य अन्य लोक को जा रहा हूं। प्रभु कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है? देखो मृत शिशु बोल रहा है, कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है? सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, अब शिशु पिता नहीं कह रहा है कि पिता, पंडित कह रहा है पंडित। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था उतने दिन रहा, अब अन्य लोग को जा रहा हूं। पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में नमस्कार है, मेरा अपराध ना माने। कहता मेरा अपराध ना माने, मुझे विदा दें। इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया, ऐसा कौतुक श्री चैतन्य ने किया। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व वार्ता सुनकर भक्त आनंद सागर में बह गए कि मरा बालक इतना बोला। एतबलिनी रव हाईला शिशु काय, ए मत कौतु के कार्य श्री गौरंग राय। मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथन, आनंद सागर भाषे सर्व भक्त गण। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया, कि पुत्र भी कहता है पंडित के घर में मैं जितना रहना था रह लिया। पुत्र कैसे कहेगा अपने पिता को ऐसे, है ना? तो बराबरी का संबंध है, पंडित बोलते हैं तो, है ना? कृष्ण प्रेम के आनंद में सब बेहवल हो गए। कृष्ण प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभु के चरणों को पकड़कर रोने लगे और बोले, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं, प्रभु हैं। श्रीवास क्या कहते हैं, जन्म जन्म में आप क्या हैं, हमारे माता भी, पिता भी, पुत्र भी और प्रभु, सब आप ही हैं। जन्म आपके चरण हम कभी ना भूलें, हे प्रभु, जहां कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, आपके श्री चरणों में ऐसी प्रेम भक्ति बनी रहे, यही भक्ति की प्रार्थना होती है। हरि बोल। जन्म जन्म तुम पितम माता पुत्र प्रभु, तुम्हारे चरण जे ना पासारी कभू। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। चार भाई कौन कौन है? श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, चार भाई भगवान के चरणों में विनती करने लगे। चारों भक्त उच्च स्वर से, चारों ओर भक्त उच्च स्वर से रुदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में चारों ओर क्रंदन छा गया और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास, तुम तो संसार के चरित्र सब जानते हो, संसार के इन दुखों से तुम्हारी भला क्या हानि है? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन ही कर लेता है। देखो, मैं और नित्यानंद ये दो तुम्हारे पुत्र हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं भगवान? वो आवाज हुई ना तो कोई सुन नहीं पाया। भगवान कह रहे हैं कि मैं और नित्यानंद ये दो तुम्हारे पुत्र हैं, मैं और नित्यानंद ये दो तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त से कुछ भी शोक दुख ना करना। श्री मुख से ऐसे परम करुणापूर्ण वाक्यों को सुनकर चारों ओर भक्त जय जयकार करने लगे। प्रभु सब भक्तों के साथ बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए। बालक को लेकर के कीर्तन करते गंगा किनारे गए, वहां बालक का अंतिम संस्कार करके सबने गंगा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब घर के लिए चले आए। प्रभु भी भक्तों के साथ अपने घर को गए। श्रीवास का परिवार बेहवल हो गया। ये सब निगुण कथा जो श्रवण करता है, सुन रहे हैं, ये निगुण कथा जो श्रवण करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। श्रीवास के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिनके गौरचंद्र और नित्यानंद जैसे दो पुत्र हैं। ये सब निगुण कथा जे कारे श्रवण, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। श्रीनिवास चरण राहो के नमस्कार, गौर चंद्र नित्यानंद नंदन जहार। ये सब अद्भुत चरित्र नवदीप में ही हो रहे थे, तथापि भक्त बिना और कोई नहीं जानता। मध्यखंड की सब कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, जैसे ये कथा जिसमें मृत के मुख से, मृत बालक के मुख से तत्व ज्ञान कहलाया गया है। तो ऐसी भगवान की जो है कथा है, दिव्य कथा है। तो ये कथा जो है बड़ी अद्भुत है, समय बहुत कम है तो इसको जो है मैं सुनाना चाहूंगा। सुनिए बड़े ध्यान से। एक दिन एकांत में बैठकर श्रीवास से भगवान ने कुछ व्यवहार की बात करी। हमेशा तो कृष्ण की चर्चा करते हैं, लेकिन आज व्यवहार की बात कर रहे हैं। किससे? श्रीवास से व्यवहार की बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम कहीं भी तो नहीं जाते हो, फिर कैसे निर्वाह करते हो? कहीं जाते नहीं हो फिर कैसे निर्वाह करते हो? और कैसे निर्वाह करोगे? श्रीवास बोले, हे प्रभु, आपसे सत्य कहता हूं, मेरा चित्त कहीं जाने को नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं होती कहीं जाने की। प्रभु ने कहा, तुम्हारा परिवार भी तो बहुत है, सबका निर्वाह कैसे होगा? सब तुम्हारे आश्रित हैं, बहुत बड़ा परिवार है। श्रीवास ने कहा, जिसके भाग में जो होगा वो होगा और जिस किसी प्रकार से वो से अवश्य मिल जाएगा। प्रभु ने कहा, ऐसा है तो तुम संन्यास ग्रहण कर लो। तो संन्यास ले लो। संन्यास लेने वाला यही तो सोचता है कि भाई अब सब जो है भगवान करेंगे देखभाल, तो संन्यास ले लो। तब श्रीवास ने कहा, ये भी नहीं लूंगा। तो भक्ति की इतनी जो है स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है जिस आश्रम में चाहे या जिस वर्ण में चाहे रहे और अपने कर्तव्य का ना भी पालन करे तो भी उसकी उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो श्रीवास कहते हैं संन्यास भी नहीं लूंगा। तो भगवान बोले संन्यास भी नहीं ग्रहण करोगे, भिक्षा करने को किसी के द्वार पर नहीं जाओगे, तब किस प्रकार परिवार का पोषण करोगे? तुम्हारे वचनों से तो मैं कुछ समझा नहीं हूं। आजकल के समय में कहीं ना जाने से कुछ मिलता तो नहीं है, कहीं से आकर दरवाजे पर तो नहीं आ जाता, तुम्हारे द्वार पर आकर ना मिले तो बताओ तुम क्या करोगे? भगवान जो है पूछते जा रहे हैं क्या करोगे? तो वहां से तीन ताली बजाकर श्रीवास ने कहा, एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं, एक दो तीन बस कह दिया, स्पष्ट कह दिया। अब स्पष्ट क्या कहा? कुछ भी नहीं। श्रीवास कहते हैं एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं आपसे। अब स्पष्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रीवास कहते हैं स्पष्ट कह देता हूं। भगवान ने प्रश्न किया था कि अगर दरवाजे पर खुद ना आए कुछ और तुम जाओगे नहीं तो कैसे पालन करोगे, अपना परिवार का कैसे निर्वाह करोगे? तो कहते हैं एक दो तीन स्पष्ट कह देता हूं। प्रभु बोले एक दो तीन जो तुमने कहा उसका क्या अर्थ है और ताली क्यों बजाई? इसका क्या अर्थ है, ताली क्यों बजाई? श्रीवास ने कहा मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि देखिए तीन दिन उपवास होने पर यदि भोजन नहीं मिला तो गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। बस सीधी सीधी बात है हमारी, तीन दिन तक नहीं मिला तो गले में घड़ा बांध के गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास कितनी बार सुनते ही सचिनंदन हुंकार कर उठे, बोले श्रीवास पंडित क्या कहा, तुम्हें अन्न के दुख से उपवास होगा, यदि लक्ष्मी भी भिक्षा करे तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी। लक्ष्मी को अगर भिक्षा करनी पड़े लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़ेगी, धन की देवी है, लक्ष्मी को भी भिक्षा करनी पड़े तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन भगवान मतलब ऐसा धन देंगे श्रीवास को कि धन रहेगा भी नहीं लेकिन घर की कमी भी नहीं होगी। सबसे अच्छा तो यही है कि धन की रक्षा करने के लिए फिर और भार हो जाता है, तो धन भी नहीं रहेगा लेकिन धन की कमी भी नहीं रहेगी, है ना? सबसे अच्छा तो यही है ना, है? ये तो फिर बैंक में जो है अपना बैलेंस खाता खोलो, फिर ये कितना चक्कर, उस समय तो बैंक भी नहीं था, फिर जमीन में गाड़ करके रखो धन, है ना, उसमें भी चोर जो है हो सकता है कि चोरी कर लें, गड़ा हुआ धन भी चुरा लेते हैं लोग, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो भगवान क्या कहते हैं, धन नहीं रहेगा ये धन की कमी नहीं होगी, है? मतलब उतनी सप्लाई जितनी आवश्यकता। मैंने स्वयं गीता शास्त्र में जो कहा उससे क्या श्रीवास तुम भूल गए हो? यदि कदाचित वा लक्ष्मी ओ भिक्षा करे तथापि दारिद्र न हे बेतोर घरे, आपने जे गीता शास्त्र बलियाओ बलिया छो मोई ताओ कि श्रीवास ए बेपस रिले तुमी। क्या कहा है भगवान ने, जो मेरा अखंड चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, उसका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते ते सामने त्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहामि हम। उनको अपने सिर पर रखकर मैं भोजन पहुंचाता हूं। योग क्षेम वहामि, वहामि का मतलब क्या है? सिर पर रखे, वाहन अपनी पीठ पर रखे, सिर पर रखे और लाए, तो भगवान कहते वहामि। जो मेरा चिंतन करता है, जो दूसरे किसी के द्वार पर नहीं जाता, उसे सभी सिद्धियां स्वयं आकर मिलती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ अपने पास उसके पास आते हैं, तथापि मेरा दास ना तो उन्हें चाहता है ना ग्रहण करता है, मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरा सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, महाप्रलय में भी उस भक्त का नाश नहीं होता। जो मेरे दास का भी स्मरण करता है मैं उसका भी पालन पोषण करता हूं। क्या समझे? दास की बात तो छोड़ दो, जो मेरे दास का स्मरण करता है उसका भी मैं पालन करता हूं, जो मेरे सेवकों का दास है वो मुझे बड़ा प्रिय होता है। ये दृढ़ सत्य है, वो मुझे अनायास ही पा जाता है। मेरे सेवक को भोजन की क्या चिंता, मैं जिसका पोषण करता हूं। हे श्रीवास तुम सुखपूर्वक घर में बैठो। क्या? तुम सुखपूर्वक घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर अपने आप आएगा। अद्वैत आचार्य तुम्हारे लिए मेरा ये वरदान है, तुम दोनों के लिए मेरा वरदान है। क्या? सुनो ध्यान से, तुम दोनों के शरीर जरा ग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि 52 साल बड़े हैं चैतन्य महापुरुष अद्वैताचार्य, और श्रीवास पंडित भी करीब करीब उतने हैं, तो शरीर जराग्रस्त नहीं होंगे, मतलब इतनी उम्र में भी बुढ़ापे की बाधा नहीं होगी। वृद्धावस्था में बड़ी बाधाएं आती है ना, है देखने में बड़ी बाधा आती है, चलने में बाधा आती है, हाथ उठाने में, बोलने में, सांस लेने में, है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कोई बाधा नहीं आएगी वृद्धावस्था की। श्री चैतन्य ने राम पंडित को बुलाकर कहा, जो छोटे भाई हैं श्रीवास के, उनको बुलाकर कहा, हे राम मेरी बात सुनो, तुम अपने बड़े भाई श्रीवास की सेवा मेरी आज्ञा से सर्वथा ईश्वर बुद्धि से करना। हे राम पंडित तुम मेरे प्राणों के समान हो, श्रीवास की सेवा करना, कभी मत छोड़ना। श्री प्रभु के वाक्य सुनकर श्रीवास और श्री राम के आनंद का अंत नहीं रहा, वे पूर्ण काम हो गए। आज तक श्रीवास के द्वार पर चैतन्य कृपा से सब कुछ स्वतः उपस्थित होते हैं। श्रीवास के चरित्र के विषय में मैं क्या कहूं, जिनके स्मरण करने से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। श्रीवास ने श्री चैतन्य की सच्ची सेवा की, उनके घर में चैतन्य प्रभु का सब आनंद है। इस प्रकार श्रीवास की इच्छा से श्री चैतन्य उनके घर पर रहे और आनंद सागर में गोता खाते रहे। तो ये श्रीवास जिस समय कहां पर थे, कुमारहट में, कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया, ये घटना उस समय की, इसके पहले की जितनी घटनाएं हैं वो समय की हैं जब संन्यास नहीं लिया था, ये संन्यास के बाद। तो श्रीवास भी घर छोड़ दे, श्रीवास ने भी घर छोड़ दिया, तो भगवान चैतन्य संन्यास के बाद वहां वापस आएंगे नहीं। जिस स्थान में संन्यास लिया है तो उस स्थान पर वापस आएंगे नहीं, तो श्रीवास और जितने भी भक्त हैं उनको फिर उनकी याद सताएगी और बहुत विरह सताएगा। तो इसलिए श्रीवास भी कुमारहट्ट में चले गए, अद्वैताचार्य भी शांतिपुर वाले अपने घर में चले गए, तो कोई आता नहीं फिर नवद्वीप में। इस कारण से सच्ची माता हैं वो जो है वहां पर रहती हैं, और कई भक्त लोग उनकी सेवा में लगे हैं, लेकिन जिनके घर में भगवान ने इतनी लीलाएं करी, अब वो घर में कैसे रहे, उनका कितना वियोग सताएगा। तो श्रीवास जो है कुमारहट्ट में आ गए थे, तो भगवान जब कुमारहट्ट में आए तब उन्होंने ये सब प्रश्न किया था श्रीवास से। ठीक है, तो हमारे पास समय नहीं है, फिर भी एक या दो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी बोलिए।
वापस नहीं आए महाप्रभु के परिकर लोग, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग उन्हीं के परिकर या उन्हीं संप्रदाय से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो संन्यास लेते हैं लोग वो तो उस स्थान पर आते जाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, तो मतलब इससे क्या हाँ, समझे?
ये जो है मतलब है कि प्रचार के लिए संन्यासी जो कहीं भी जा सकता है, तो प्रचार के लिए सन्यासी कहीं भी जा सकता है, लेकिन अपना संबंध बनाने के लिए नहीं जाता कि पुराने संबंध याद करो, फिर वही जो है उसी भाव में आ जाओ, है ना, ये हमारे माता ये पिता, इस तरह की पहचान फिर नहीं, ये नहीं है। ठीक है ना, श्री श्रीवास पंडित तिर भावतिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमन की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, गौर नताई की, कृष्ण बलराम की, हरि बोल।